अष्टमः परिच्छेदः गुणनः रसस्यांगम् इत्त्वम् मात्तस्य धर्माः सौर्यादयो यथा गुणः यथा खल्वाङ्गित्वम् आप्तस्यात्मन उत्कर्षहेतुत्वाक्षोर्यादयो गुणशब्दवाच्याः तथा वाक्काव्ये लिङ्गत्वमाप्तस्य धर्माः स्वरूपविशेषा माधुर्या आदयोऽपि स्वसमर्पयोः कन्दर्पशम् दर्भस्य काव्यव्यपदेशस्यापैक् अनुगुणव्यभाज इत्यर्थः यथा चैप्साम् रसमात्रस्य धर्मत्वम् तथा दर्शितम् एव माधुर्यमोजो अथ प्रसाद इति ते त्रिधा चित्तद्रवीभावमयोः रादो माधुर्यमुच्यते यतूकेन च यदुक्तम् माधुर्यदृतिकारणम् इति तन्नः द्रवीभावस्यास्वादस्वरूपाहरादभिनत्तेन कार्यत्वभावात् द्रवीभावश्च स्वभावा विनानाविष्ठकत्वात्मकाठिन्यमन्युक्रोधादिकृतदीप्तत्वविस्मय रास्ययुत्पहितविक्षेपप्रत्यागेन रत्याद्याकार अनुराग वेद्वानन्दोदबोधेन सहृदय यचिताद्र पायत्वं च संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्ते अधिकं क्रमात् संभोगादिशब्द उपलक्षणानि तेन संभोगाभासादिस्वप्य तस्य स्थितिर्गेता मूर्धिनः वर्गान्तरेण वर्णेन यत्कृष्टान् दण्डान्वित्न रणौ लघु च तदव्यक्तौ वर्णाः कारणताम् गताः अवृतिरल्पप्रवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा अनङ्गम् अङ्गभुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः जनयन्ति मुहुर्यान्मन्तः सन्तापः सन्ति मयथाव मम लताकुञ्जम् गुञ्जनमद अलीपुञ्ज चपलनयन् शमालिङ्ग अङ्गम् द्रुतर मनङ्गम प्रबलयन् मरून्मन्दम् मन्दम् दलितमरबिन्दम् तरलयन् रजोबृन्दः बिन्दन कीर्तिमकरन्दम् दिशि दिशि ओजश्चैचितस्य विस्ताररूपम् दिव्यत्वम् उच्यते वीरविभत्सरौद्रेषु कर्मेण अधिकमस्यतु अस्यौजसः अत्रापि वीरादिशब्द उपलक्षणानि तेन वीरभासादावस्य अस्यावस्थिति वर्गस्याद्य तृतीयाभ्याम् युक्तौ वर्णौ तदन्तिभौ उपर्योद्धौ द्वयोर्वा सरेष्ठै सह सकारश्च सकारश्च तस्य व्यञ्जकताम् गताः तथा समासो बहुलो घटन्नौ उद्भूत्यशालिनी यथा चद्भुज् इत्यादि चित्तम् व्याप्नोति यः क्षिप्रम् शुष्केन्धनम् इवानलम् स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च व्याप्नोति अविष्कारोति शब्दास्तद्वयव्यञ्जकाः अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रत शुचिमुखेन सकृदेव कृतवर्णस्त्वम् मुक्ताकलाप लुठसीस्तनयोः प्रियायाः बाणैः स्मरस्य सतसो विनिकृतमर्माः स्वपनेऽपि ताम् कथमहम् न विलोकयामि येषाम् शब्दगुणत्वम् च गुणवृत्त्योच्यते बुद्धैः। शरीरस्य शौर्यादि गुणयोग इति शेषः श्लेष समाधि रौदार्य प्रसाद इति ते पुनः गुणाश्चिचरन्तन्नैरुक्ता ओजस्यन्तर भवन्ति ते ओजसी भक्त्या ओजशब्दवाच्ये शब्दार्थधर्मविशेषे तत्प्रश्लेषो बहुनायपि पदानामेकं पदभाषणात्मा यथा उन्मज्ज्वलकुञ्जरेन्द्र साष्फालमनुबन्ध्योद्धतः सर्वाः पर्वतकन्दरोदरभुवः कुर्वन्त प्रतिध्वनिनिः उच्चैरुक्षरति ध्वनिः श्रुतिपन्थोन्माथि यथायं तथा प्रायप्रेङ्खदशङ्ख्यंसः खल्व खदवलाः वेलेयमुद्रक्षति अयं बन्धवैकटयात्म कत्वादोज एव समाधिरारोहावरोहक्रम् आरोह उत्कर्षः अवरोहो अपकर्षकः तयोः क्रमो वैरस्यातानावहो विन्यासः यथा च अद्भुत इत्यादि अत्र पादत्रयक्रमेण बन्धस्य गाढता चतुर्थपादे त्वपकर्ष तस्यापि च तीव्रप्रयत्नोच्चार्यत ओजस्विता उदारता विकटलक्षण विकटत्वं पदानाम नित्यप्रायत्वं यथा सुचरणविष्टैर्नुपुरैः नर्तकीनाम झणितिरणितमासितत्र चित्रं कलं च अत्र च तन्मातानुसारेण रसानुसन्धान अन्तरेणैव शब्दप्रौढोक्तिमात्रेणयौ प्रसादवोचोः मिश्रितशैथिल्यात्मा यथा यो यः शस्त्रं बिभर्ति स्वभोजगुरुमदः पाण्डवीनाम च मुनाम इति माधुर्यव्यञ्जकत्वं यदस्मा समासस्य दर्शितं पृथक्पदत्वं माधुर्यतैनेवाङ्गकृत पुनः यथा श्वासानमुञ्चतीत्यादि अर्थव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनैव परिग्रह अर्थव्यक्तिपदानामहि झटित्यर्थसमर्पणं स्पष्टम् उदाहरणं ग्राम्यदुःश्रवतात्या गात्कान्तिश्च सुकुमारता अङ्गीकेति सम्बन्धः कान्तिरौज्ज्वलं यं तच्च हालिकादिपदविन्यासवैपरीत्येन लौकिक शोभाशालीत्यं सुकुमारता अपारुष्यम् अनयोः उदाहरणे स्पष्टे क्वचिदोषस्तु समता मार्गभेदस्वरूपिणि अन्यथोक्तगुणेश्वस्य अन्तपातो यथा यथं मसृणेन विकटेन वा मार्गेणो पक्रान्तस्य सन्दर्भस्य तेनैव परिनिष्ठानं मार्गाभेदः स च क्वचिद्दोषः तथा हि अव्यमूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोगं च बिभ्रदुप्पुः पारीन्द्रः शिशुरेश पाणिपूटेकं समातुं किं तावता उदद्ध दुर्धरङ्गन्ध सिन्धुरशतप्रोधामदाना वर्णस्त्रोतः शोषणा रोषणपुनरितः कल्पाग्निरप्रल्पायते अत्रोध्यर्थे वाच्ये सुकुमारवन्ध्यत्यागो गुणः एव अन्ये वन्धिविधस्थाने माधुर्यादवेदान्तः पातः यथा लताकुञ्जं गुञ्जत इत्यादि ओजः प्रसादो माधुर्यं सौकुमार्यदूरता तद्भावस्य दोषत्वा स्वीकृता अर्थगागुणः ओजः शंसाभिप्रायत्वं प्रसादो अर्थैवैमल्यं माधुर्यम् उक्तिवैचित्र्यं सौकुमार्यम् अपौरुषयम् उदारता अग्राम्यत्वम् एषां पञ्चानामत्यर्थ गुणानाम यथाक्रमं पुष्टार्था अधिक पदानिं विकृता मंगलरूपाश्लीलग्राम्यत्वानाम निराकरणे नैवंगीकारः स्पष्टान्यौदाहरणानि अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्तत्यालंकारेण तथा पुनः रसध्वनि गुणीभूतव्यंग्यानाम कान्तीनामकः अंगीकृतैति सम्बन्धः अर्थव्यक्तिर्वस्तु स्वभावस्फुटत्वं कान्तिदीप्तिरसस्त्वं स्पष्टे उदाहरणश्लेषो विचित्रात्मात्रदोषः समतापरं श्लेषकर्मकौटिल्यानुबणत्तोपपतियोगरूपघटनात्मा तत्र क्रमः क्रियासन्तति विद्घश्चेष्टितं कौटिल्यम् अप्रसिद्ध वर्णना विरहो अनुल्बणत्वम् उपपादकयुक्ति विन्यास उत्पत्ति एषां योग सम्मेलनम् स एव रूपं यस्या घटना स्याद्रश्लेषो विचित्र्यमात्रम् अनन्यासाधारणसोपकारित्वातिशयविरहादिति भावः तथा दुष्टैकवाशनशंसिथिते प्रियतमे इत्यादि अत्र दर्शनादयः क्रियाः उभयसमर्थनं रूपं कौटिल्यं लोकसंव्यवहाररूप अनुमणत्व एकांशंसनिष्ठस्थिते पश्चादु उत्पेत्य नयने पिघाय ईषद्वक्रीतकन्धरः इति चोपपादकानि येषां योगः अनेन च वाण्योपतिग्रहणव्यग्रतया रसास्वादो व्यवहिता प्राय इत्यस्या गुणता समता च प्रकरान्त प्रकृते प्रत्यया पर्ययसानि सीनार्थस्य विसंवादिता विच्छेदः स च प्राक्रम्भङ्गरूपविरह एवं स्फुटम् उदाहरणत् सगुणत्वं समाधेयश्च समाधि अन्ययोग्य अन्यच्छायायावु निरुपद्दी विविधार्थ दृष्टिरूपः तत्तायो निर्रथो यथा सद्यो मुण्डितं मातहूण जीवोत्प्रस्पर्धी नार अङ्गकम् अन्यक्षायायो निर्था निजनयन प्रतिबिम्बैरम् अम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि नीलोत्पलेऽपि विस्मृति कर्म अर्पयितुं कुसुमलावि अत्र नीलोत्पलनयन योर अतिप्रसिद्धं सादृश्यं विक्षित्ति विशेषण निबद्धम् अस्य च असाधारण शोभानाधायकत्वान् गुणत्वं किन्तु काव्यशरीरमात्रनिर्विकत्वम् क्वचित् चन्द्रम इत्येकस्मिन् पदार्थे वक्तव्ये अत्रे नयन समुत्थं ज्योति इति वाक्यवचनम् क्वचिद् निदाद्धशीतलं हिमकालोष्म सुकुमारशरीरावयवा योषित इति वाक्यार्थे वक्तव्ये वरवर्णिनि इति पदाभिधानम् क्वचिदेकस्य वाक्यार्थस्य क्वचिद्विशेषनिवेशकान् सानदैरवाक्यैरभिधानामित्येवन्रूपोऽभ्यासः क्वचिद्बहुवाक्यप्रतिपाद्यस्यैकवाक्येन अभिधानमम् इत्येरूपम् समासश्च इत्येव आदिनामन्यैरक्तानामन गुणत्वमौचितम् अपि तु वैचित्र्यत्वं मात्रावहत्वं तेन नार्थगुणाः पृथक् तेनोक्तप्रकारेण अर्थगुणा ओजप्रभृतयः उपरोक्ताः इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनानाम् अष्टम् परिच्छेदः हिन्दी लीलालोलमलोलेन मनसा संसृतं श्रिया श्रिया विजिकत कंदर्पम नुमस्तम दर्पहम दिशाम। दोषों का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं। रसस्य इति देह में आत्मा के समान काव्य में अंगित्व अर्थात प्रधानता को प्राप्त जो रस उसके धर्म माधुर्य आदि को उसी प्रकार गुण कहते हैं जैसे आत्मा के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है। यथा खल्विति जैसे देह से अंगित्व को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्टता के निमित्त होने से शौर्य आदि को गुण कहते हैं, इसी प्रकार काव्य में प्रधान भूत रस के धर्म अर्थात उसके रूप विशेषण माधुर्य आदि भी अपने संपर्क पद समुदाय में काव्यत्व व्यवहार के उपयोगी अनुगुणीय को सिद्ध करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो समुदाय गुणों का व्यंजक होता है वह काव्य कहता है, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं। अतः जहाँ गुण है वहाँ रस भी अवश्य रहेगा और रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ब्रैकेट वाक्य रसात्मकम काव्य ब्रैकेट बंद। इसलिए गुण युक्त पद समूह सरस होने के कारण काव्य भी अवश्य कहाएगा। इस प्रकार गुण अपने व्यंजक पद समूह में काव्य पद के व्यवहार की उपयोगिनी अनुकूलता को सिद्ध करते हैं। जैसे किसी वीर पुरुष के शरीर की रचना को देखने से ही उसकी वीरता प्रतीत होने लगती है, वैसे ही कठोर पद संदर्भ को देखने से ओज गुण की प्रतीति होती है। जैसे वीरता आदि आत्मा के गुण है देह के नहीं, इसी प्रकार ओज आदि भी रस के ही गुण है पद समुदाय के नहीं। यथा च इति गुण जिस प्रकार रस के धर्म माने जाते हैं उसी प्रकार प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं माधुर्यम इति वे गुण माधुर्य ओज और प्रसाद इस तीन भेदों में विभक्त है। चित्त इति उनमें से चित्त का द्रुति स्वरूप आह्लाद जिसमें अंतःकरण द्रुत हो जाए ऐसा आनंद विशेष माधुर्य कहता है। यत् यह जो किसी ने कहा है कि माधुर्य द्रुति कारण है सो ठीक नहीं है, क्योंकि द्रवी भाव या द्रुति या स्वाद स्वरूप आह्लाद के अभिन्न अंग होने के कारण कार्य नहीं है। आस्वाद या आह्लाद रस का पर्याय है, द्रुति रस का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है और रस कार्य नहीं, अतएव द्रुति भी कार्य नहीं। और जब द्रुति कार्य ही नहीं तो उसका कारण कैसा? द्रुति का लक्षण करते हैं द्रवी भावश्चेति रस का भावना के समय चित्त की चार दशाएं होती है, कांठिन्य दीप्तत्व विक्षेप और द्रुति। किसी प्रकार का आवेश न होने पर अनाविष्ट चित्त की स्वभाव सिद्ध कठिनता वीरता आदि रसों में होता है एवं क्रोध और मन्यु ब्रैकेट अनुता ब्रैकेट बंद आदि के कारण चित्त का दीप्तत्व रौद्र आदि रसों में होता है। विस्मय और हास्य आदि उपाधियों से चित्त का विक्षेप अद्भुत और हास्य आदि रसों में होता है। इन तीनों दशाओं काठिन्य दीप्तत्व और विक्षेप के न होने पर रति आदि के स्वरूप में अनुगत आनंद के उद्भव होने के कारण सुहृदय पुरुषों के चित्त का पिघल सा जाना द्रवी भाव या द्रुति कहता है। तच्च इति माधुर्य का विषय बताते हैं। संभोगे इति संभोग श्रृंगार करुण विप्रलम्ब श्रृंगार और शांत रसों में क्रम से माधुर्य बढ़ा हुआ रहता है। शांत रस में सबसे अधिक माधुर्य होता है, यहाँ संभोग आदि पद उपलक्षण है, अतः संभोगाभास आदि में भी माधुर्य की स्थिति जानना। मूर्धन इति तठ ड ढ से भिन्न वर्ण आदि में वर्गों के अंतिम वर्णों जैसे यमंगण नम में युक्त होने पर अर्थात अपने पूर्व अपने वर्ग के पंचम अक्षर से संयुक्त होने पर माधुर्य के व्यंजक होते हैं। इसी प्रकार लघु ऋण भी माधुर्य के व्यंजक वर्ण है एवं आवृत्ति यानी कि समास रहित अथवा अल्पवृत्ति यानी छोटे छोटे समासों वाली मधुर रचना भी माधुर्य वर्ण है। उदाहरण अनंग इति कामदेव की मंगल भूमि उस नायिका के कटाक्षों की तरंगे यौवनशाली पुरुषों के अंतःकरण में बार बार संताप को विस्तारित करती है। इस श्लोक में के पूर्वार्ध में अंग और ग का संयोग एवं उत्तरार्ध में न और त का संयोग माधुर्य की व्यंजक है। ग्रंथाकार अपना बनाया दूसरा उदाहरण देते हैं। लतेति गुंजार करते हुए मस्त भ्रमर पुंजों से युक्त लता कुंज को चंचल करता हुआ देह का आलिंगन करके अतिशीघ्र अनंग को बढ़ाता हुआ विकसित कमल को धीरे धीरे कंपित करता हुआ और पुष्परज को धारण किए हुए मंद मंद चलता हुआ यह मलय समीर प्रत्येक दिशा में पुष्परस को छिटकता है। इस पद्य में ज य च ग ग न द आदि वर्णों का संयोग माधुर्य का व्यंजक है। इस श्लोक के अंत में दिशी दिशी के सब लघु और अप्रौढ़ वर्णों के कारण बंध में शिथिलता आ गई है। यदि इसके स्थान पर प्रतिदिशम पाठ कर दे तो यह हतवृत्तता दोष दूर हो सकता है। ओज इति चित्त का विस्तार स्वरूप दीप्तत्व ओज कहता है। जैसे विभत्स और रौद्र रसों में क्रम से इसकी अधिकता होती है यहाँ भी वीर आदि शब्द उपलक्षण है। अतः वीराभास आदि में भी इसकी स्थिति जाननी चाहिए। वर्गस्य इति वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का दूसरा अक्षर और तीसरे के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का अगला अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं ट ठ ड ढ स और स ये ओज के व्यंजक होते हैं। इसी प्रकार लंबे लंबे समास और उदत रचना ओज का व्यंजक करती है। उदाहरण जैसे पूर्वोक्त चज भूत इत्यादि चित्तम इति जैसे सूखे ईंधन में अग्नि झट से व्याप्त होती है। इसी प्रकार जो गुण चित्त से में तुरंत व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। जैसे यह गुण समस्त रसों और संपूर्ण रचनाओं में रह सकते हैं। शब्द इति सुनते ही जिनका अर्थ प्रतीत हो जाए ऐसे सरल और सुबोध पद प्रसाद के व्यंजक होते हैं। जैसे सुचि हे मुक्त कलाप एक तुम हो जो केवल सुई की नोक से एक ही बार विद होने पर सदा प्रिया के स्तन मंडल पर लौटते रहते हो और एक मैं हूँ जो कामदेव के असंख्य बाणों से सैकड़ों बार मर्माहत होने पर भी अपने स्वप्न तक में उसके दर्शन नहीं पाता। इस पद्य के सरल पद प्रसाद का व्यंजक है केशाम इति इन माधुर्य आदि को शब्द का गुण अथवा अर्थ का गुण लक्षणा से कहा जाता है। जिन आचार्यों ने इन्हें शब्द और अर्थ का गुण कहा है वह लक्षणा के प्रयोग जानना। जैसे शौर्य आत्मा का ही धर्म है परंतु कभी कभी आकार एवास्य सुरह ऐसा लक्षण से प्रयोग होता है। उसी प्रकार रस के धर्म गुणों को भी काव्य के शरीर स्थानीय शब्द और अर्थ में स्थिर कहा जाता है। प्राचीन आचार्यों ने 10 शब्द के गुण और 10 अर्थ के गुण मानते हैं, उनको पृथक मानने की आवश्यकता नहीं। इस अभिप्राय से पूर्वाचार्योक्त गुणों का उक्त 3 गुणों से यथासंभव अंतर्भाव दिखाते हैं। श्लेष इति श्लेष समाधि औदार्य और प्रसाद ये जो शब्द के गुण प्राचीनों से ने माने हैं वे सब ओज के अंतर्गत हो जाते हैं। यहाँ ओज पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता है। ओज शब्द वाच्य उसी धर्म से उक्त गुणों का अंतर्भाव जानना क्योंकि पूर्वोक्त चित्त विस्तार रूप ओज में श्लेष आदि शब्द के गुणों का समावेश नहीं हो सकता। शब्दार्थ धर्म विशेष इस मूल ग्रंथ में अर्थ पद अनावश्यक है क्योंकि शब्द के श्लेष आदि गुणों का अर्थ के धर्म में अंतर्भाव नहीं हो सकता। बहुनाम इति अनेक पदों का एक पद के समान भाषित होना श्लेष कहता है। प्राचीन समस्त श्लेष का उदाहरण उन्मजद इति प्रलय काल के समुद्र का वर्णन है। उभरते हुए बड़े बड़े जलीय हाथियों के सवेग छलने से उद्धृत और सब पहाड़ों की कंदराओं में प्रतिध्वनित पैदा करने वाली कानों के पदों को फाड़ने वाली यह घोर ध्वनि उठ रही है। इससे मालूम होता है कि अधिकता से घूमते हुए असंख्य मरे हुए शंखों से युक्त शुक्ल यह समुद्र की बेला उमड़ रही है अर्थात मर्यादा छोड़कर उदीर्ण होने लगा है। इस पद्य का बंध विकट है और बंध की विकटता ओज ही है। अतः श्लेष गुण ओज से पृथक नहीं दूसरा शब्द निकट समाधि माना है। यारोह और अवरोह के क्रम को समाधि कहते हैं। यारोह उत्कर्ष को कहते हैं और अपकर्ष का नाम अवरोह है। इन दोनों में विरसता न पैदा करने वाले विन्यास को क्रम कहते हैं, जैसे अद्भुत इत्यादि, जैसे चाद भुज इत्यादि। इस पद्य के तीन चरणों में रचना क्रम से चढ़ती गई है और चौथे चरण में कुछ उतरी हुई है, पर वह भी तीव्र प्रयत्न से उच्चार्य के कारण अर्थात महाप्राण प्रयत्न के अक्षरों से युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के संवेग उच्चारण होने के कारण ओज के ही अनुरूप है। अतः समाधि को भी ओज के ही अंतर्गत जानना उदारता विकटत्व का नाम है और विकटत्व पदों की नाचती हुई सी दशा को कहते हैं। जहाँ पद नाचते से हो वहाँ सबके सब झुमझुमाते हुए हो वहाँ उदारता गुण माना जाता है। जैसे सुचरण इति नाचती हो वेश्याओं के रमणीय चरणों में स्थित नूपुरों से वहाँ विचित्र और मनोहर झनकार का शब्द हुआ। अत्र च इति इस पद्य में वामन आदि पूर्वाचार्यों के मत से रसानुसंधान के बिना ही शब्दों की प्रौढ़ी मात्र से ओज की प्रतीति होती है। ओज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है। जैसे यो यह शस्त्रम इत्यादि पद्य ये दोनों भी पूर्वोक्त ओज के अंतर्गत है। माधुर्य इति प्राचीनों में माधुर्य नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका लक्षण किया है। पृथक पदत्व अर्थात अलग अलग समास रहित पदों का होना माधुर्य कहता है। वह माधुर्य पहले जो असमास को माधुर्य गुण का व्यंजक बताया है उसी से अंगकृत जानना, यह उससे भिन्न नहीं है। अतः उसी के स्वीकार से इसका स्वीकार समझना। जैसे श्वसान इत्यादि पूर्वोक्त पद्य अर्थ व्यक्तेर इति पदों का झट अर्थ को व्यक्त करना अर्थ व्यक्ति नामक गुण बताया है। सो वह गुण पूर्वोक्त प्रसाद गुण अर्थात उसके व्यंजक शब्दों के ही अंतर्गत है, अतः इसे पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ग्राम्य इति ग्राम्यत्व दोष के परित्याग से प्राचीन सम्मत कांति नामक शब्द गुण और दुसरत्व नामक दोष के परित्याग से सुकुमारता नामक शब्द गुण का स्वीकार जानना। उज्ज्वलता को कांति कहते हैं। सो हलवाहक गंवार आदमियों के व्यवहारित पदों को परित्याग करने के लौकिक शोभा से युक्त होना ही उज्ज्वलता कहती है। अतः ग्राम्यत्व दोष के छोड़ने से ही वह गतार्थ है। पारुष्य न होने को सुकुमारता कहते हैं। इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हैं। कर्तार्थ आदि कठोर पद और कटी आदि ग्राम्य पदों के अप्रयोग से में से ये गुण उत्पन्न होते हैं। क्वचिद दोष इति मार्ग भेद रूप समता कहीं दोष हो जाती है, जहाँ दोष नहीं होती है वहाँ प्रसाद माधुर्य और ओज में उसका अंतर्भाव हो जाता है। मश्रीणेन इति कोमल अथवा तीव्र रसना से प्रारंभ किए हुए प्रकरण को उसी प्रकार में समाप्त करना मार्ग भेद कहता है। वह कहीं दोष होता है, जैसे अध्युडाद अंगम इति हाथ पैर पेट आदि अंगों के अव्यूढ़ ब्रैकेट अपुष्ट ब्रैकेट बंद होने पर यह नन्हा सा बच्चा भले ही हाथ के संपुट में समा जाए इससे क्या होता है, फिर जवान होने पर तो सैकड़ों मदांध हाथियों की प्रवर्ध मद द्वारा धारा को सुखाने वाले क्रोध से भीषण इस क्रोध से प्रलय काल की अग्नि भी अल्प की जाएगी। उद्धता मुद्र गक्षदांधु धुर्धरन धारण ओर्धमना नाम गंध सिंधु राणाम मदांध गजानाम दानारणवस्य मदसागरस्य स्त्रोतसाम प्रवहाराणाम सोणशोषणाम रोषणम क्रोधो यस्य तस्मातम इत्यस्मात् पुनर्यौवन दशायाम इत्यर्थः। इस प्रकार के पूर्वार्ध की रचना कोमल है, परंतु उत्तरार्ध में उसे बदल कर रचना कठोर कर दी है। उत्तरार्ध में उद्धत अर्थ ब्रैकेट क्रूर केसरी ब्रैकेट बंद वाच्य है, अतः सुकुमारता रचना का परित्याग करना गुण ही है। और जहाँ ऐसा स्थल नहीं है, जहाँ मार्ग का भेद करना आवश्यक नहीं है, वहाँ इस समता का माधुर्यादि गुण को में ही अंतर्भाव होता है। सुकुमार बंध होने पर माधुर्य में और विकट बंध होने पर ओज में इसका अंतर्भाव होता है। इस प्रकार दसों शब्द गुणों का अंतर्भाव दिखाकर अब प्राचीन सम्मत अर्थ गुणों का अंतर्भाव दिखाते हैं। ओज इति, ओज प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य और उदारता, इनके अभाव की दोषों में गिनती की गई है। अतः इन्हें गुण पक्ष में स्वीकृत समझना, इनको यद्यपि नवीन में पृथक नहीं माना है परंतु इनके अभाव को दोष माना है। पदों का साभिप्राय होना किसी विशेष भाव का सूचक होना ओज कहता है। अपुष्टार्थत्व नामक दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता है। बिना प्रयोजन के कोई पद रखने से अपुष्टार्थत्व दोष होता है। जब इस दोष का परित्याग किया जाएगा तो पदों को साभिप्रायता अपने आप आ जाएगी। अतः ओज नामक गुण के पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थ की विमलता को प्रसाद कहते हैं। अधिक पदता दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता है। किसी पद का अधिक होना और एक प्रकार का मल होता है। इसका परित्याग करने से ही विकसित विमलता आ जाती है। उक्ति की विचित्रता, कथन की अपूर्वता को माधुर्य माना है। यह अनविकृतत्व दोष के परित्याग से गृहित होता है। उसके परित्याग करने पर उक्त वैचित्य आ जाता है। कठोरता न होने पर सुकुमार्य कहते हैं। यह अमंगल व्यंजक अश्लीलत्व के परित्याग से ही गतार्थ है। अमंगल व्यंजक अश्लील अर्थ में कठोरता रहती है, उसको छोड़ने से कठोरता छूट जाती है और सुकुमारता आ जाती है। अग्राम्यत्व को उदाहरण माना है, सो ग्राम्यत्व दोष के परित्याग से गतार्थ जाना है। इनके उदाहरण पहले आ चुके हैं। अर्थव्यक्ति ही प्राचीन आचार्य वस्तु के स्वभाव की स्फुटता को अर्थव्यक्ति नामक अर्थालंकार मानते हैं। यह स्वभाव की अलंकार में के ही अंतर्गत है। एवं रस की प्रदीपता को कांति माना था, वह रस ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंगों के अंतर्गत है। श्लेष इति, श्लेष केवल विचित्रता है, रस का विशिष्ट उपकार न होने से इसे गुण नहीं मानने कह सकते और समता केवल दोषाभाव रूप है। अतः इसको भी पृथक गुण मानना आवश्यक नहीं। क्रम कौटिल्य अनुलवणत्व और उत्पत्ति इनके सम्मेलन स्वरूप रचना को श्लेष कहते हैं। इनमें से क्रियाओं की परंपरा को क्रम कहते हैं। चतुर चेष्टाओं का नाम कौटिल्य है। अप्रसिद्ध वर्णन का न रखना अनुलवणत्व कहता है। काम को सिद्ध करने वाली युक्तियों का नाम उत्पत्ति है। इन सब का मिल जिसमें हो वह रचना श्लेष कहती है। सो यह श्लेष वैचित्र मात्र है। दोष का असाधारण उपकारकत्व इसमें नहीं है और यह भी एक अतिशय गुणत्व का प्रयोजक होता है। सो रस का साधारण असाधारण उपकारक होता है, वही गुण माना जाता है। वह बात इस श्लेष में है नहीं, अतः यह गुण नहीं हो सकता। श्लेष का उदाहरण दृष्टवेका इत्यादि पूर्वोक्त पद्य है। इसमें दर्शन आदि क्रियाएं हैं। दोनों क्रियाओं को प्रसन्न करना कौटिल्य है। लोक व्यवहार का ही कथन करना अनुलवणत्व है। एक आसन बैठा होना, पीछे से आना, नेत्र मुंदना, थोड़ा कंधा घुमाना आदि क्रियाएं उपपादक है। इन सबका यहाँ योग है। यह श्लेष के द्वारा वाच्य अर्थ का ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र हो रहती है। रसास्वाद प्रायः व्यवहित हो जाता है, अतः इसे गुण नहीं मानते। समता च इति प्रारंभ किए हुए प्रकृति आदि प्रत्यय आदि में परिवर्तन के परित्याग को समता माना है। यदि प्रकरांत प्रकृति प्रत्यय आदि में विपर्यस्त कर दिया जाए तो भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ भिन्न सा प्रतीत होने लगता है, अतः उसमें विसंवादिता सी आ जाती है। और यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बदले जाए तो इस विपर्यास के कारण अर्थ की विसंवादिता का विच्छेद होता है। जैसे उदेति सवितः ताम्रः के आगे यदि सोण एवास्ततः मृक्षति कर दिया जाए तो समता जाती रहेगी। जो कि यह आवश्यक है। यह समता भग्नपक्रम नामक दोष का अभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं। न गुणत्वम इति, समाधि भी कोई गुण नहीं हो सकता। समाधि दो प्रकार की मानी है, एक तो अयोनी अर्थात जिसमें अर्थ की बिल्कुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी अन्य छाया जोनी अर्थात जिस अर्थ में दूसरे अर्थ की छाया ली गई हो। अयोनी का उदाहरण जैसे सद्य इति, किसी ने नारंगी को देखकर कहा कि हाल के मुड़े हुए गोरे की थोड़ी के समान लाल लाल नारंगी है। अनन्यान्योनी अर्थ का उदाहरण निज इति, कोई मालिन पानी में अपने नेत्रों की छाया से बहुत बार धोखा खा चुकी है, खिला कमल समझकर उसे तोड़ने को हाथ चलाया पर पीछे देखा तो कुछ नहीं, तब पता चला कि अपने नेत्र के छाया को ही कमल समझकर तोड़ने चली थी। अतः अब वस्तुतः खिले हुए कमल के ऊपर हाथ डालने में भी ठिठकती है। इस पद्य में नील कमल और नेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध तुल्यता को ही विशेष चमत्कार बनाया है। यह समाधि असाधारण शोभा की अधायक नहीं, अतएव गुण भी नहीं, किंतु काव्य के सरारभूत अर्थ मात्र की साधक होती है। क्वचिद इति, यही कहीं एक चंद्र पद के अर्थ को बतलाने के लिए अत्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति इतना बड़ा वाक्य बोला जाता है, और कहीं ग्रीष्मकाल में शीतल और शीतकाल में उष्ण सुकुमार शरीर वाली सुंदरी इतना बड़ा वाक्यार्थ बोलने की जगह केवल एक पद वर्ण वर्णिनी बोल दिया जाता है। वहीं एक ही वाक्यार्थ को कुछ कुछ विशेषताएं दिखाकर अनेक वाक्यों में से कहा जाता है। इस प्रकार का व्यास और कहीं कहीं अनेक वाक्यों के प्रतिपाद्य अर्थ को एक ही वाक्य से कहकर जो समास किया जाता है, ये दोनों तथा इनके सदृश और प्रचिन्न सम्मत विचित्रताएं गुण नहीं कहा जा सकता, ये तो केवल वैचित्र है, रस के प्रधान उपकारक नहीं। तेन इति, इसलिए अर्थ के गुण भी पृथक नहीं माने जाते। उक्त प्रकार से ओज आदि अर्थ गुणों के पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इति विमलाय अष्टम प्रच्छेद समाप्त है। इस प्रकार विमलाकृत साहित्य दर्पण का अष्टम परिच्छेद समाप्त हुआ।